पाकिस्तान में 7:17, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। अमरीकी नामंतखब सदर जो बाइडन ने जुमेरात को अमेरिकन रेस्क्यू प्लान नामे 1.9 ट्रिलियन डॉलर का मुजवजा रिलीफ पैकेज पेश किया है, जिसमें बिलखसूस कोरोना वैक्सीन की फराहमी के अलावा वबा की वजह से माली मुश्किलात के शिकार अफराद और कारोबारों के लिए फंड मुख्तस किए जाएंगे। इस पैकेज के जरिए वो अपनी हुकूमत के पहले 100 दिनों में 100 मिलियन कोरोना वैक्सीन देने का हदफ हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा वो चाहते हैं कि मौसम बहार तक ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल्स में वापस लौट सकें। जो बाइडन मईशत की बहाली और कोरोना वायरस पर काबू पाने को अपनी अहम तरीन तरजीहात करार देते हैं। 20 जनवरी को हलफ लेने के बाद उन्हें इस पैकेज की मंजूरी के लिए दोनों जमातों की जानिब से हिमायत की उम्मीद है। नई सेनेट में दोनों जमातों के पास 50-50 सीटें हैं, तहम नायब सदर कमला हैरिस का टाई ब्रेकर वोट मिलाकर जो बाइडन की डेमोक्रेट जमात के पास 51 वोट्स हैं, जबकि ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स के 222 और रिपब्लिकन्स के 221 वोट्स हैं। अमरीकी नायब सदर माइक पेंस ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों के अमरीकी कैपिटल के मुहासरे के 8 रोज गुजरने के बाद जुमेरात को इस अज़्म का इजहार किया है कि अमरीकी तारीख को बरकरार रखा जाएगा और मुंतखब सदर जो बाइडन को महफूज इंतकाल इकतदार को यकीनी बनाया जाएगा। पेंस ने कहा कि बाइडन और नायब सदर कामला हैरिस दोनों 20 जनवरी को हमारी तारीख और हमारी रिवायात के मुताबिक इस अंदाज से हलफ उठाएंगे जो अमरीका के लोगों और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बायस तौकीर हो। अमरीका ने अपनी तयशुदा पॉलिसी के मुताबिक अफगानिस्तान में तैनात अपनी फोर्सेस को कम करके 2500 कर दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने गुज़श्ता साल नवंबर में अफगानिस्तान में तैनात फोर्सेस की तादाद में कमी का हुक्म दिया था, जुमेरात को एक मुख्तसर बयान में कहा है कि अफगानिस्तान में अमरीकी फोर्सेस की तादाद गुज़श्ता 19 साल में कमतरीन सतह पर पहुंच गई है। तहम सदर ट्रंप ने यह वाजे नहीं किया कि यह तादाद कितनी है। दूसरी जानब अफगानिस्तान की कौमी सलामती की कौंसिल ने कहा है कि अमरीकी फोर्सेस की तादाद में कमी का अफगानिस्तान की सलामती की सूरत हाल पर कोई मनफी असर नहीं होगा। गुज़श्ता रात शिमाल मशरकी सूबे कुंदस में इमाम साहब के मकाम पर तालिबान ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकियों पर हमला करके 10 फौजियों को हलाक और दीगर 10 को जख्मी कर दिया। एक सिक्योरिटी एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि इस हमले में अफगानिस्तान के 6 फौजी और 4 पुलिस एहलकार हलाक हुए हैं। तालिबान ने फिलहाल इस हमले के बारे में कोई ऐलान जारी नहीं किया है। उधर अफगानिस्तान से मुलका कबायली जिले शिमाली वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रवा हफ्ते लगातार 4 दिन नामालूम उस अस्करियत पसंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर हमले करके कम अज कम 5 एहलकारों की जान ले ली और मुतअद्दिद को जख्मी कर दिया। फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ने जुमेरात के रोज जारी करदा बयान में इन हमलों की तस्दीक करते हुए कहा कि 2 हमलों में 3 एहलकार मारे गए हैं। जवाबी कार्रवाई में एक अहम कमांडर समेत 2 दहशतगर्दों को भी हलाक करने का दावा किया गया है। पिछले दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इसी किस्म के एक हमले के बाद इसी गांव के 4 बाशिंदों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी धरना भी 6 दिन से जारी है। पाकिस्तान में सहाफियों, खासकर खवातीन सहाफियों के खिलाफ इंटरनेट पर नफरत आमेज मुहिम चलाने और उन्हें हिरासत करने के वाकयात में इजाफे पर सहाफियों के हकूक के लिए काम करने वाली बैनुल अक्वामी तंजीमों ने तशवीश का इजहार किया है। बैनुल अक्वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने मुतालबा किया है कि हुकूमत नफरत व किरदार कुशी पर मबनी सहाफियों के खिलाफ ऐसी मुहिम से लातालुकी का इजहार करे। हुकूमत का कहना है कि वह ऑनलाइन हिरासगी पर किसी किस्म की नरमी की रवादार नहीं है, तहम हिरासगी की तशरीह के लिए सहाफियों को हुकूमत के साथ बैठकर कवायद वजवाबित बनाने चाहिए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक बोइंग 777 तैयारा कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर अदालती हुक्म पर मकामी हुकाम ने कब्जे में ले लिया है। PIA का कहना है कि एक केस बरतानिया की अदालत में जेर इल्तवा था और उसी केस में मलाइशिया की अदालत से एक तरफा फैसला हासिल करके तैयारे को कब्जे में लिया गया है। पाकिस्तान में अपोजिशन ने इस मामले पर हुकूमत पर शदीद तनकीद की है, जबकि हुकूमत का कहना है कि मामले को सिफारती जराए से हल करने की कोशिश की जा रही है। खबरें खत्म हुई।
मजलिस मुज़ाकरा राउंड टेबल। اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
اپنے میزبان قمر عباس جعفری کا سلام قبول کیجیے۔ صاحب، امریکہ ہو یا پاکستان یا دنیا کا کوئی بھی ملک، کرونا وائرس کی وبا نے وہاں لوگوں کی زندگیوں کو بری طرح متاثر کیا ہے، اور ماہرین کی بقول یہ وائرس اپنی حیات بھی تبدیل کرتا رہتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ یہ میوٹیٹ کرتا ہے، اور گزشتہ چند روز کے دوران دنیا کے کئی ملکوں میں اس کے میوٹیشن کے بعد نئی اقسام کا وائرس دریافت ہوا ہے، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ خطرناک اور زیادہ تیزی سے پھیلنے والا ہے۔ ہرچند کہ اس بیماری سے بچاؤ کے لیے اب ویکسین بھی آ گئی ہے، لیکن دنیا بھر میں بہت سے لوگ اب بھی اس ویکسین کو لگوانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں تیار نہیں ہیں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اس کے علاوہ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ویکسین کس طرح تیار ہوتی ہے، کیا اس میں لائیو وائرس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تمام سوالوں کے جوابات کے لیے ہم نے اس پروگرام میں ماہرین سے گفتگو کی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت انفیکشس ڈیزیزز کے ایک ماہر ڈاکٹر ساجد چودھری ہیں۔ ڈاکٹر ساجد چودھری، یہ فرمائیے کہ نئی قسم کا کرونا وائرس کتنا خطرناک ہے اور اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟
جو جس کو ہم کہتے ہیں یہ کرونا وائرس ایک فیملی ہے وائرس کی، جو کہ کافی عرصے سے موجود تھی پہلے بھی، اور یہ جیسے جس کو ہم کہتے ہیں نزلہ، زکام، کھانسی، کامن کولڈ عرف عام میں، تو یہ والی اس طرح کی ڈیزیز اس سے ہوتی تھی پہلے بھی، ہمارے پاس کیسز آتے تھے، اور یہ یوزولی سیلف لمیٹڈ ہوتی ہے، خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ جو ابھی نئی جو کووڈ 19 جس کو ہم کہتے ہیں، ایک میوٹیشن اس کی آئی تھی کہ جو ہائیلی انفیکشس تھی، اور اس کے بعد پھر وہ کچھ پرسنٹیج میں وہ ڈیڈلی ڈیزیز بھی ہوتی تھی، اس کی وجہ سے پینڈیمک کی پھیلی اور یہ ہائیلی انفیکشس ہے۔ تو یہ میوٹیشن اس کی نیچرل ہے، وہ ہوتی رہتی ہے وائرس، تو اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک میں، یہ انگلینڈ میں سب سے پہلے ایک ڈیٹیکٹ ہوئی، پھر ابھی ساؤتھ افریقہ میں بھی، جاپان میں بھی، آئی ایم شیور کہ امریکہ میں بھی اور اسٹرینز ہوں گی جیسے ہی ہم ان کو دیکھنا شروع کریں گے، اور مائنورٹی، کیونکہ بہت ساری جو اسٹرینز ہیں وہ ان کے سمپٹمز آلموسٹ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، تھوڑی بہت انفیکٹیوٹی ریٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ انفیکشن اسپریڈ کرنے کا ریٹ، وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے ان میں، اور وہی ہوا ہے جو انگلینڈ میں نئی اسٹرین آئی ہے، وہ پہلی والی سے زیادہ جلدی ٹرانسمٹ ہوتی ہے، لیکن ادر وائز اس کے سمپٹمس کو بہت زیادہ سیویئر نہیں ہوتی، وہ اسی طرح کی ہیں، لیکن انفیکٹیوٹی ریٹ جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسمیشن ریٹ، وہ زیادہ بڑھ گیا اس کا۔ تو جتنا زیادہ ٹرانسمیشن ریٹ بڑھتا ہے، اتنا سمجھ لیں کہ پینڈیمک کے اسپریڈ ہونے کا چانسز بھی اتنے بڑھتے جاتے ہیں، کنٹرول، یا دوسری صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ کنٹرول کرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔
ڈبلیو ایچ او جو ہے، اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ جو ڈارک امیج پیش کر رہا ہے آنے والے دنوں کے لیے بھی، کہ مزید ویوز بھی آ سکتی ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟
بالکل ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ نیچرل وے ہے وائرس کا میوٹیٹ کرنے کا، یہ کرتی رہتی ہیں، اور جس طریقے سے اب یہ کر رہی ہیں، تو پاسبلٹی ہے کہ اور بھی اسٹرینتھ ہوں، میوٹیٹ کریں، اور اس کے بعد پھر ان کا ہی ڈفرنٹ ان کا انفیکٹیوٹی ریٹ ہوگا ظاہر، آف کورس، تو یہ آلویز اٹس اے پاسبلٹی کہ اور اسٹرینز آ سکتی ہیں۔
اچھا، اب جو ویکسین آ رہی ہے، جیسے مڈرنا کی ہے یا فائزر کی ہے یا اور دوسری بھی ویکسینز ہیں، ان کے بارے میں کیا اب ریسرچ ہوئی ہے کہ کیا یہ ساری اسٹرینز کو کور کریں گی؟
ابھی تک تو ہماری یہی ایکسپیکٹیشن سمجھنے کی ہے کہ ساری اسٹرینز کو یہ کور کریں گی، جو نئی اسٹرینز بھی ہیں وہ بھی جو اسی اینٹی باڈی جو پروڈیوس ہو رہی ہیں انہیں سے ہی کنٹرول ہوں گی، کیونکہ یہ جو ویکسین ہے وہ بیسیکلی جو وائرس کی، جس کو ایک وائرس کی جو شکل بناتے ہیں، شیپ بناتے ہیں، اس میں اوپر اسپائک بنی ہوتی ہے، تو ان کو کہتے ہیں اسپائک پروٹین، تو ان کی وجہ سے وائرس جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے سیلس کے ساتھ، اور پھر انفیکشن کاز کرتی ہے باڈی میں، ان پروٹین کے اگینسٹ یہ اینٹی باڈیز بن رہی ہیں، تو تاکہ وائرس کی انفیکٹیوٹی کم ہو۔ اسی وجہ سے جو لوگ آلریڈی ویکسینیٹڈ ہوں گے، اینٹی باڈیز پروڈیوس ہو چکی ہوں گی، تو ان میں یہ وائرس جو اینٹی پروڈیوس ہوتی ہیں ان کو وائرس جو ہے بائی پاس کر جائے یا وہ افیکٹو نہ ہو, اور یا وائرس اپنی جو پروٹینز ہیں اسپائک پروٹین کافی ساری وہ چینج کر دے, پھر ہو سکتا ہے کہ یہ اینٹی باڈیز افیکٹو نہیں ہوں. لیکن ابھی تک جو چینجز ہیں اس کی میوٹیشن میں جو آئی ہیں نئی اسٹرین, ابھی تک جتنی چینجز اس میں ہوئی ہیں وہ اس کو وائرس کو اینٹی باڈیز سے پروٹیکٹ کرتی ہے.
اچھا, دوسرے یہ کہ امریکہ میں بطور خاص یہ اتنے بڑے پیمانے پر کیوں پھیلا, اور یہاں پر افیکٹو میجرز کی وجہ سے بھی اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا سکا؟
اس میں جو مجھے تو وجہ نظر آتی ہے کہ جب بھی جہاں پہ بھی گیدرنگ ہوئی ہے جن جن دنوں میں, جب بھی جو ٹائمنگ ایسے ویکیشن کے ہالیڈیز کے ٹائمز آئے ہیں ان کے اس کے بعد 10 سے 15 دن کے اندر میں جہاں جہاں پہ بھی انہوں نے لوگوں نے یا آفیشلز نے ان کو موٹیویٹ نہیں کیا اور لوگوں نے ان کو پریکاشنری پریونٹیو میجر کو فالو نہیں کیا, اس کے بعد وہاں پہ یہ ویو ڈیفینیٹلی زیادہ آئی ہے اور سرچ ہوئی ہے. جیسے کہ میں آپ کو ریسنٹلی بتا دوں, فلوریڈا میں کافی حد تک کنٹرول ہو گیا تھا, اس کے بعد جیسے ہی وہ آیا تھینکس گیونگ کے بعد سے ہماری پھر ایک دم سے اوپر جانا شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد دسمبر کے لاسٹ 2 ڈیز میں یہاں پہ ٹورسٹ بہت آئے اورلینڈو ایریا میں, اور اس کے بعد اب ہمارے ہاسپٹل ریڈ الرٹ میں یہاں پہ بھرے ہوئے سارے. تو اسی ٹائم پہ بھی بلکہ میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ جو ہالیڈیز ہیں ٹورسٹ ہیں یہاں پہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, نیو ایئر پارٹیز اور کرسمس پارٹیز, اس کے آفٹر افیکٹ ہم اگلے 10 سے 15 دنوں میں دیکھیں گے, اور یہ اگر کم از کم اگلے 2 سے 3 ہفتے تک اسی طرح یہ چلتی رہے گی انٹل اس کے بعد پہ کنٹرول ہونا شروع ہوگا.
اچھا, کتنے پرسنٹ پاپولیشن کو ویکسینیٹ کیے جانے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب یہ فردر اسپریڈ نہیں ہوگا؟
کم از کم بھی 60%. اگر 60% پاپولیشن جو ویکسینیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایون باقی 40% نہ بھی ہو تو چانسز ہیں کہ چونکہ لوگ افیکٹڈ نہیں ہوں گے, اگر افیکٹ نہیں ہوں گے پھر آگے وہ ٹرانسمٹ نہیں کریں گے, تو دیٹس ہاؤ وی وڈ سی اینڈ جو ہے بریک ہوتی ہے.
امریکہ میں جو اتنا سلو پیس ہے ویکسینیشن کا, اس کا کیا سبب ہے؟
سب سے مہنگا جو مین فیکٹر اس میں آیا ہے وہ یہ ایڈمنسٹریشن کا تھا, اور اس کے بعد آف کورس جب تک آپ کی پراپر پلاننگ اور اس کی ایگزیکیوشن نہ ہو تو پاسبل نہیں, اس وجہ سے جس سے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ جو ماڈرنا اور فائزر کی تقریباً مکہ ان کے پاس 20 ملین ڈوزز تھی, اور جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ جیسے یہ اپروو ہوں گی تو ود ان دسمبر January 1st سے پہلے پہلے 20 ملین لوگوں کو لگ, لیکن اس میں سے میرے خیال 6 یا 7 ملین ابھی تک یوز ہو چکی ہیں, ہو سکی ہیں, باقی نہیں لگ سکتے.
لوگ بھی ہچکچا رہے ہیں کہ کیوں لگوائیں اور اس سے ڈرے ہوئے ہیں, نئی نئی باتیں پھیل رہی ہیں, اس کا کیا سبب ہے؟ کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے یہ یا یہ کہ کسی پروپیگنڈے کا حصہ ہے؟
یہ دونوں فیکٹر ہیں, آپ نے بجا فرمایا, یہ پروپیگنڈے کا بھی ہے اور سائیکولوجیکل فیکٹر بھی ہیں, اور اس میں پھر اگین میں آؤں گا لیڈرشپ کا بھی ہے, کہ اگر لیڈرشپ کی طرف سے یہ ایک میسج جائے کہ جی یہ ویکسین جو ہے یہ افیکٹو ہے, اپروپریٹ ہے اور اس پر نیڈ آف دا ٹائم, تو پھر لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں, لگواتے بھی ہیں, چونکہ ایٹ لیسٹ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ لگوا چکے ہیں. وہی ہے یہ لیڈرشپ کا, ہمارے جو کاؤنسل آفیشیل, اسٹیٹ آفیشیل, سمجھنے کے میئرس اور کانگریس مین, سینیٹرز, یہ سارے کے سارے لوگ اگر باہر آئیں پبلکلی ڈکلیئر کریں کہ دے آر گیٹنگ دا ویکسین, اس میں پھر لوگوں کا کانفیڈینس بوسٹ ہوگا, اور میرا خیال ہے کہ یہ ایونچولی 60% لیول آف ویکسینیشن پہ پہنچنے کے لیے یہ ایک مہم کو سب کو چلانی پڑے گی.
عام طور پر جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ ڈی این اے تبدیل کر دیتا ہے آدمی کا, اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, اگر یہ بتایا جائے لوگوں کو کہ یہ ویکسین کس چیز سے بنی ہے تو شاید ان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, کس چیز سے بنتی ہے یہ ہمارے سننے والوں کو ذرا بتائیں.
جی, یہ ویکسین جو سمجھتے ہیں کہ جو اس کو میسنجر آر این اے ویکسین, یہ اس کے ٹیکنالوجی کو کہتے ہیں, تو میسنجر آر این اے ایک قسم کا میسج ہوتا ہے جو کسی بھی ہماری باڈی میں جو سیلز ہیں یا کسی بھی اینیمل میں جو سیلز ہوتے ہیں ان میں جا जाके वो एक मैसेज लेके जाता है कि क्या चीज कैसे प्रोड्यूस करनी है। तो वायरस का जो मैसेंजर आ रहा है जो कि ये प्रोटीन बनाता है जिसको हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन, जो वायरस के आउटर सरफेस पे स्पाइक्स होती हैं उनमें जो प्रोटीन होती है जो कि बॉडी के सेल्स के साथ अटैच होती है, तो वो प्रोटीन जो है बनाने का जो जो मैसेंजर आ रहे हैं ये बेसिकली वो चीज है बैठी जिसको हम कहते हैं। तो वो जब एक ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट होता है तो वो जाके ह्यूमन बॉडी के सेल्स जो है उनके अंदर जाके एग्जैक्टली वही मैसेज देता है जो वायरस की प्रोटीन है वो वायरस वो प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए। जब वो बॉडी में वो प्रोटीन प्रोड्यूस होती है तो बॉडी जो है हमारे एक नेचुरल एक मैकेनिज्म बना हुआ है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन चीज आती है अंदर तो उसको बॉडी आइडेंटिफाई करता है कि दे हैव टू एक्ट अगेंस्ट दैट फॉरेन एजेंसी या फॉरेन प्रोटीन, तो बॉडी फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। और उसके बाद जब एक्चुअल वायरस होती है फिर वो एंटीबॉडी प्रोटेक्टिव होती है क्योंकि वो ऑलरेडी उसी प्रोटीन के अगेंस्ट बन चुकी होती है। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है जो मैंने जो जनरल आसान अल्फाज में बताया है कि इसमें वायरस का कोई पार्टिकल वायरस नहीं होता एक्चुअली, सिर्फ वायरस का एक जो मैसेंजर आ रहे हैं वो एक होता है जो बॉडी में इंजेक्ट होता है।
और तमाम दुनिया में जहां जहां भी ये वैक्सीन बन रही हैं वहां यही मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है।
तीन जो है वो यही मेथोडोलॉजी है जिसमें ये मॉडर्ना है और फाइजर है और एक और है जो इंग्लैंड में आई है, आई थिंक मुझे नाम उसका निकल है। ये तीन है जो मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी है। बाकी जो वैक्सीन बन रही है जिसमें पहल चाइनीज भी और इंग्लैंड में एक और बनी है यूके की फॉर्म की, वो ट्रेडिशनल जो पुराना हमारा तरीकेकार होता है जिसमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बनती है उसमें वायरस का एक्चुअली वायरस की प्रोटीन देते हैं तो उसको फिर इंजेक्ट करते हैं और बॉडी फिर उसके अगेंस्ट प्रोटीन एंटीबॉडी बनाती है। तो ये जो वैक्सीन है पढ़ना की और समझने एक एक्स्ट्रा सोफिस्टिकेटेड स्टेप है कि बजाय आप वायरस की प्रोटीन देने के आप सिर्फ उसका सिर्फ मैसेज देते हैं और फिर आपकी बॉडी ही वो प्रोटीन बनाती है और एंटीबॉडी बनाती है। तो कॉन्सेप्ट एक ही है सब तक दोनों का, लेकिन उसको उस तक पहुंचने का तरीके का समझे डिफरेंट है।
इसमें लाइव वायरस इस्तेमाल नहीं करते?
नहीं जी, लाइव वायरस बिल्कुल, बल्कि वायरस का जैसे मैंने कहा जो मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी है इसमें वायरस का कोई किसी किस्म का कोई जो जो इंफेक्शन करता हो या वायरस सच हो वो नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन जो लाइव वायरस तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जो दूसरी जो वैक्सीन बन रही है जो भी जॉनसन एंड जॉनसन की आई है उसमें वायरस का पार्ट इस्तेमाल करते हैं, नॉट द होल वायरस। तो जो वायरस का पार्ट होता है वो इन्फेक्शन नहीं करता ना, वो और वायरस बना सकता है, वो सिर्फ बॉडी उसको यूज कर सकता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन वो पार्टिकल एफर्ट आगे वायरस प्रोड्यूस नहीं कर सकता।
ये थे डॉक्टर साजिद चौधरी।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
ये प्रोग्राम बुध के रोज रिकॉर्ड किया गया है और अब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है डॉक्टर शासिफ खान जो कि बाल्टीमोर के सनाई हॉस्पिटल में रेजिडेंसी भी कर रहे हैं और कोरोना वायरस के मरीजों के वार्ड को भी देख रहे हैं। डॉक्टर शाहजेब, ये फरमाइए कि जो नई म्यूटेटेड किस्म है कोरोना वायरस की, उसकी क्या सूरत हाल है, वो किस नौयत की है?
डिफरेंट डिफरेंट तरह के वायरसेस होते हैं। कोरोना वायरस एक तरह का वायरस है, इसी तरह से जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो एक और तरह का वायरस है। तो जो वायरस है वो म्यूटेट होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उसी के तहत ये वायरस की उसी तरह से म्यूटेट होते हैं। तो जिस तरह से इन्फ्लुएंजा का वायरस है वो हर साल म्यूटेट होता है और काफी ज्यादा म्यूटेट होता है, इसलिए फ्लू शॉट हर साल नया बनता है। जो कोरोना वायरस है कोविड 19 उसकी एक किस्म है। तो ये जो वायरस है ये इतना म्यूटेट नहीं होता जितना कि फॉर एग्जांपल फ्लू का वायरस होता है, लेकिन हर महीने ये पिछले से आया है कुछ म्यूटेशन इसमें आ रही थी। अब ये म्यूटेशन कभी उसकी जो वॉल होती है उसके अंदर होती है, कभी किसी तरह से, कभी कहाँ पे, तो ये छोटी बहुत म्यूटेशन होती रहती है। अभी जो ये लेटेस्ट म्यूटेशन हुई है उसकी वजह से ये हुआ है कि ये वायरस जो है वो इन्फेक्ट ज्यादा आसानी से कर पा रहा है, लेकिन इससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इसका जो कोई ज्यादा फेटल हो गया हो या उसकी वजह से ज्यादा सीवियर डिजीज हो रही हो या डेथ ज्यादा बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं देखा। तो जहां तक की बात ये है कि ये जो अभी वैक्सीन आई है फाइजर की, ये इसको इसमें प्रोटेक्ट करेगी।
अच्छा, वैक्सीन जो है ये काम किस तरह से करती है जिस्म के अंदर जाकर?
तो असल में ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि वैसे अमूमन तौर पर जो वैक्सीन बनती हैं वो कोई वायरस या जो भी बैक्टीरिया होता है उसको या तो लाइफ फॉर्म में उसको या फिर उसको मार के डेड फॉर्म के अंदर बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस दफा इन्होंने जो वैक्सीन बनाई है वो एक एमआरएनए वैक्सीन है। एमआरएनए डीएनए की तरह होता है, ये मैसेंजर आरएनए कहते हैं इसको। ये बॉडी के अंदर जाके और जी कोरोना वायरस का डीएनए बना के कोरोना वायरस का एक मिमिक पार्टिकल बनाता है, और जब वो चीज बनती है तो उसके अगेंस्ट फिर बॉडी को लगता है कि जी इन्फेक्शन आया है, तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट करती है, उस स्पेसिफिक वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट करती है जो कि अभी तक नहीं होती। तो आहिस्ता आहिस्ता करके बॉडीज में एंटीबॉडीज ज्यादा से ज्यादा बनती रहती है, और उसके बाद जब वो एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो वो बॉडी के अंदर एक तरह से स्टोर हो जाती है, आप समझे। तो जब दूसरी दफा इन्फेक्शन अगर किसी को लगेगा तो वो एंटीबॉडीज ऑलरेडी तैयार होती है अच्छी मिकदार में, तो फिर वो इस इन्फेक्शन को फौरन फाइट करने के काबिल होती है। तो इस तरह से हर वैक्सीन काम करती है बेसिकली, तो ये वैक्सीन भी इसी तरह से काम करेगी। इसीलिए आपने सुना होगा कि दो डोजेस लगती है इस वैक्सीन, तो जिस तरह से जो दूसरी डोज है उसमें से ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, ज्यादा फीवर वगैरह होते हैं, वो इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी बॉडी के अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स मौजूद है। जो आपने पहली दफा वायरस वैक्सीन दी थी, जब दूसरी दफा वैक्सीन देते हैं तो वो इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत बुखार बॉडी वगैरह सामने आता है।
अच्छा, इस वैक्सीन के बारे में आमतौर पर अमेरिका में भी, पाकिस्तान में भी और दूसरे मुल्कों में भी बड़ी गलत फहमियां पाई जाती हैं, या इसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन है बहुत ज्यादा और लोग लगवाने से इसको एतराज कर रहे हैं। क्यों है ये मिस इन्फॉर्मेशन, तो इसका सबब क्या है?
देखिए, इसका सबब ये है कि एक नई चीज है, और जिस तरह से बाकी वैक्सीन है, मीजल्स की वैक्सीन है, टेटनस की वैक्सीन है, ये सालों साल से मौजूद है, इतने लोगों को लग चुकी है, और इतने ट्रायल्स के बाद आम पॉपुलेशन में बहुत सालों से लोगों को लगती आ रही है और पता है कि इसमें कोई ऐसे इफेक्ट्स नहीं है। जो कोविड की वैक्सीन है वो ऑब्वियसली एक नई चीज है, सबसे पहली बात यह। दूसरी बात यह है कि एक क्विक पेस पे बनाई गई है, तो वो भी एक लोगों की दिमाग के अंदर एक हेजिटेंसी क्रिएट करती है चीज। और मुख्तलिफ चीजें हैं, ऑब्वियसली रूमर्स और कंस्पिरेसी थ्योरीज तो हर किस्म की होती है, उसमें तो मैं डल्स नहीं करूंगा, लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि एक नई चीज है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपनी कोविड की डोज जिस पहले दिन अवेलेबल हुई थी उसी दिन लगवा ली थी। जो पहले डोज के बाद थोड़ी सी आर्म के अंदर सोरनेस हुई थी जो तकरीबन 24 घंटे चली थी, उसके अलावा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुए। कम्प्लीटली सेफ वैक्सीन है, कोई इसमें कोई चांस नहीं है कि वैक्सीन से आपको कोरोना हो जाए, इम्पॉसिबल बात है। तो कम्प्लीटली सेफ उस हिसाब से, और थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स फ्लू शॉट से भी होते हैं। बेहतर है कि एक दिन का बुखार अगर इंसान को हो जाए बनस्बत के COVID-19 हो। 95% इफेक्टिविटी रेट है इसका, इफेक्टिवनेस इज जो कि बहुत कम वैक्सीन में पाई जाती है, तो बहुत ही एक अच्छा अच्छा नंबर है।
फ्लू वैक्सीन जो लगवाते हैं सब लोग, इसकी एफिकेसी कितनी होती है?
देखिए, फ्लू वैक्सीन की एफिकेसी जो है वो हर साल चेंज होती है, इसका कोई नंबर मैं आपको इस तरह से नहीं दे सकता, क्योंकि जो फ्लू वैक्सीन होती है वो जो मैंने आपको पहले अर्ज किया था कि फ्लू का जो वायरस है वो हर साल चेंज हो जाता है। वो एक मुख्तलिफ किस्म का वायरस है, उसमें एक चीज होती है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और शिफ्ट, तो उसमें एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होती है जिसकी वजह से जो वैक्सीन है, जो वायरस है वो हर साल एक मुख्तलिफ किस्म का वायरस निकलता है, उसको ये प्रिडिक्ट करते हैं पहले वैक्सीन बनाने से कि इस साल किस किस्म का वायरस होगा, तो डिपेंड करता है कि वो कितना एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करें और कितना अच्छा फ्लू शॉट बने। कुछ साल जो है वो बिल्कुल इतना अच्छा काम नहीं करता, कुछ साल अच्छा काम करता है।
अच्छा, एक बात भी कही जा रही है आमतौर पर जो सर्कुलेट कर रही है बहुत ज्यादा अमरीका समेत कई मुल्कों में, कि इस वैक्सीन से डीएनए इंसान का चेंज हो जाता है, उसमें कितनी हकीकत नजर आती है आप?
बिल्कुल भी हकीकत नहीं है। वैक्सीन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है और जो उसका डीएनए है वो विद इन 1 to 2 days बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज है जो कि आप एक शॉट दे के एक डीएनए चेंज कर सकते हैं। एक डीएनए आपका बोन मैरो के अंदर होता है, वहाँ आपके आपके सेल्स वहां से जनरेट हो रहे होते हैं, और ऐसे ऐसे एक वैक्सीन से डीएनए बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं। और वैक्सीन इटसेल्फ जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है अंदर जाके, जो डीएनए है उसका 1 से 2 दिन के अंदर, तो बिल्कुल इसमें कोई हकीकत नहीं है। दूसरी चीज ये है कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट जो है वो तो अभी हमें नहीं पता, ठीक है। अब अगले 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के अंदर कोई साइड इफेक्ट अगर होते हैं तो वो ना मुझे मालूम है, ना किसी और को मालूम है, ना जिन्होंने वैक्सीन बनाई है उनको मालूम है, क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ है। लेकिन असल बात यह है कि आपको रिस्क बेनिफिट एनालिसिस देखना पड़ता है कि क्या रिस्क कोरोना होने का रिस्क जो है वो ज्यादा है, या वैक्सीन लगवाने में पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स आगे 10 साल बाद होने को ज्यादा है। और स्पेशली यूएस के अंदर जो सिचुएशन है और पाकिस्तान में भी आगे और काफी फैल रहे हैं, वहां पे नंबर्स जो है वो कितने एक्यूरेट हैं कितने एक्यूरेट नहीं है ये हमें मालूम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो हॉस्पिटल्स के अंदर जगह खत्म हो गई है, तो बहुत जरूरी है कि वैक्सीन लगवाई जाए ताकि इसके नंबर्स कम हो।
दूसरे, ये कोई इस किस्म की कैंपेन चलाई जा रही है कि जो गलतफहमियां हैं उनको दूर किया जाए?
जी बिल्कुल, और जो कैंपेन डॉक्टर्स कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो भी अपनी वैक्सीन लगवा रहा है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं वैक्सीन लगवाते हुए, न्यूज चैनल्स पे भी लोगों ने वैक्सीन लगवाते हुए तस्वीरें और वीडियोस उनकी आई हैं, क्लिपेज फुटेज आए हैं, और स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी तस्वीरें लगा रहे हैं जब वैक्सीन को लगवा रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बयान कर रहे हैं ताकि जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस आए और वो वैक्सीन लगवाए।
कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं। शुरू में तो जाहिर है कि किसी को भी नहीं पता था, कोई डॉक्टरों को, रिसर्चर्स को नहीं पता था, लेकिन अब क्या एस्टेब्लिश हुआ है कि ये हवा से लगता है, एयरबोर्न है, ग्रोसरी आप खरीदने जाते हैं उससे लगता है, मेल आप देखते हैं उससे लगता है, जूते आप पहनकर अंदर घर में आते हैं उससे लगता है, क्या सूरत है इसकी?
देखिए, इसका जो ट्रांसमिशन है, जो वायरस है वो ड्रॉपलेट से, कॉन्टैक्ट एंड ड्रॉपलेट से लगता है, ठीक है। दो चीजें हैं, तो ड्रॉपलेट ये बेसिकली होती है कि किसी इंसान ने छींका या किसी इंसान ने खांसा या इवन सांस ली, तो वो जो वायरस के पार्टिकल्स हैं वो हवा के अंदर ड्रॉपलेट के फॉर्म में हवा के अंदर आ जाते हैं। अगर दूसरे इंसान ने उन पार्टिकल्स को इनहेल कर लिया सांस के जरिए या उसकी आंख में लग गए किसी बॉडी फ्लूइड के थ्रू अंदर चले गए, तो वो एक इन्फेक्टिविटी का मीन्स होता है। दूसरा, इसके जो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन का जो है वो बीच में था, तो जो छोटे ड्रॉपलेट पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत माइन्यूट साइज के होते हैं वो एयरबॉर्न भी रह सकते हैं, बट वो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, उनका वेट इतना होता है कि वो बहुत जल्दी जमीन पे गिर जाते हैं। मैं ये कहूंगा कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन इसकी इतनी नहीं है जितनी ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है। दूसरी चीज हम कहते हैं कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट ये होता है कि फॉर इंस्टेंस आप किसी इंसान ने छींका और उसके हाथ पे लग गई, उसने वो चीज जो है वो दरवाजे का हैंडल पकड़ा और दरवाजे का हैंडल मेटल का था, उस मेटल पे वो जर्म्स लग गए। अब वो 12 to 24, 36 hours उस मेटल के ऊपर जर्म्स रह सकते हैं। दूसरे इंसान ने उसी पर हाथ लगाया, उसके बाद अपने मुंह पे लगा लिया, आंख पे लगा दिया, जिस तरह मुंह लोगों की आदत होती है, तो ये कौन मीन्स ऑफ स्प्रेड है। तो इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, 6 फिट दूर है। दूसरी चीज ये है जो हम कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी बहुत से मुल्कों के अंदर लोग नहीं पहनते, मास्क पहने। मास्क से ये होता है कि आप अगर अपने आप को भी बचा रहे हैं और आप दूसरे को भी बचा रहे हैं अगर खुदा खास्ता आप इन्फेक्टेड हैं। और तीसरी चीज ये है कि हैंड वॉशिंग वेरी फ्रीक्वेंटली। आप घर वापस आए, आप हाथ धोएं, आप घर से 2 मिनट के लिए निकले चाहे 10 मिनट के लिए निकले, वापस आए जरूर हाथ धोएं। आप अगर काम पे जा रहे हैं, आप इसेंशियल हैं, आप काम पे जाना जरूरी है, आप घर आए और अपने कपड़े लॉन्ड्री में डाल दें, कपड़े धो लें, आप नहा लें ताकि आपकी बॉडी जो है वो क्लीन हो जाए, अपने फोन वगैरह जो भी है उसको कोई अल्कोहल सॉप वगैरह से डिसइंफेक्ट करें। तो ये चीजें बहुत जरूरी है और इन्हीं चीजों से हम कोशिश कर सकते हैं कि हम जितना प्रिवेंटिव मेजर्स ले सके वो।
अच्छा ये
इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और दूसरे मुल्कों के अंदर वैक्सीन कब आएगी कब नहीं आएगी ये इस वक्त अनक्लियर है, तो अभी तो हमें वही प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं जो हम इतने महीने से ले रहे हैं, उन्हीं को कंटिन्यू करना है।
अच्छा मास्क जो पहनते हैं आप, क्या उसको वापस आने के बाद फेंक देना चाहिए या उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं?
देखिए मास्क हम दोबारा बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट 2 to 3 days। ये सब इस बात का जो जवाब है वो इस पर डिपेंड करता है कि कितनी अवेलेबिलिटी है। ठीक है, अगर तो एम्पल अवेलेबिलिटी है और आपको आपके पास कोई ऐसी अब तो मास्क बहुत बन गए हैं तो आप वापस आके फेंकना चाहें आप फेंक भी सकते हैं, एटलीस्ट एक पूरा दिन यूज करने के बाद। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप यूज भी कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, एज लॉन्ग एज आपका मास्क गीला ना हो। अगर आपका मास्क गीला हो गया, फॉर इंस्टेंस आपने उसमें छींक दिया या कुछ ऐसा हो गया, तो फिर देन ऑब्वियसली फिर आपको उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, या फिर कहीं वो पानी लग गया उस पर या कुछ, तो फिर मास्क की जो इफेक्टिविटी है वो कम हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि जो कपड़े के मास्क हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जरूरी नहीं है कि आप सर्जिकल मास्क इस्तेमाल करें, कपड़े के मास्क इस्तेमाल करना भी बहुत अच्छा है और वो धुल सकते हैं, रीयूजेबल हो सकते हैं, जितनी दफा आप उनको धोना चाहें रीयूज करना चाहें तो वो कर सकते हैं।
जो आप ग्रोसरी खरीदते हैं या खाना खरीदते हैं बाहर से, उससे भी लगने के इम्कानात हैं या मेल से?
ग्रोसरी वगैरह और मेल है उसमें वही बात है कि बहुत लो रिस्क है। अगर किसी ऐसे इंसान ने आपकी मेल हैंडल की हो जो कि इन्फेक्टेड हो तो पॉसिबल है कि इन्फेक्टिविटी हो जाए, लो रिस्क है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने आपके पास कोई पैकेज आया है तो आप 24 आवर्स के बाद उसको उठा लें, अगर आपने फॉरन उठाना जरूरी है तो आप उसको उठा के डिसइनफेक्ट कर लें, और अगर आपने इसको डिसइनफेक्ट कर दिया एक दफा तो फिर उसके बाद देयर इज नो नीड टू वरी। जहां तक कि खाने पीने का सवाल है तो अगर आप खाना पीना हीट वार्म फूड खा रहे हैं, एक दफा आपने उसको हीट कर लिया तो उसके बाद तो कोई रिस्क नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपने मास्क पहने रहे और जहां भी लोग हैं कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस करें, बिकॉज ये बहुत ही खतरनाक डिजीज है। कुछ मुल्कों के अंदर इतनी नहीं फैली जितनी कुछ और मुल्कों में फैली है, US इज वन ऑफ द वर्स्ट, और यहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत बुरा हाल है, बहुत लोग की इस वजह से डेथ्स हो रही है, फेटैलिटी रेट इज वेरी हाई, मोर्टैलिटी रेट इज वेरी हाई, एंड क्या कहते हैं बस दुआ करें कि अल्लाह इस मुकासला सबको महफूज रखे।
ये थे डॉक्टर शाहजेब खान जो बता रहे थे कि अमेरिका में ये मर्ज बहुत तेजी से फैल रहा है।
आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है, फीडबैक देने के लिए फॉलो कीजिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA।
और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर मुबीन राठौर जो कि इन्फेक्शियस डिजीजेस के माहिर भी हैं और रिसर्चर भी हैं। इनसे हम पूछेंगे कि अगर अमेरिका में इतनी तेजी से फैल रहा है ये वायरस, तो वैक्सीन आ जाने के बावजूद वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त क्यों है? जी डॉक्टर मुबीन।
बस ये मसला ये है कि वैक्सीन तो जैसे आपको मालूम है काफी है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है। मतलब हमारे भी हेल्थ सिस्टम्स पे बहुत कोशिश कर रहे हैं पूरा पूरा दिन, वीकेंड्स पे हर जगह लोगों को लगाने की, लेकिन फिर भी जो लोग लेना चाह रहे हैं वैक्सीन उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेसिमेट हो गया हुआ है कि वो भी नहीं कर सक रहे, तो आई थिंक ये जो चीज है इसके लिए चाहिए होते हैं लोग जो इंजेक्शन लगाए, प्रोसेस है ना, ये तो ऐसे नहीं है कि वैक्सीन आ गई तो चलो बात खत्म होगी, और ये भी नहीं है कि वो जैसे यूजुअल वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम जो होता है वो प्रैक्टिस में होता है ना, अस्पतालों में तो नहीं होता, पीडियाट्रिशियंस के ऑफिस, फैमिली फिजिशियंस के ऑफिस, डॉक्टर्स के ऑफिस, वहां जाके लोग लगाते हैं। ये जो है ये हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं या अब उधर हेल्थ डिपार्टमेंट्स में जा रहे हैं और या फिर जा रहे हैं ये CVS वॉलग्रीन्स वगैरह पे, तो वो उसकी वजह से है। दूसरा मसला ये हुआ कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी हमारे हेल्थ सिस्टम में, तो हमने ये नहीं किया, लेकिन कुछ हेल्थ सिस्टम से कर रहे थे, अगर 1000 डोज आया तो 500 बचा के रखा और 500 लोगों को दे दिया कि सेकेंड डोज भी देंगे, वो भी एक मसला बन गया इस मौके पर, बजाय 1,000 लोगों को 500 लोगों को मिला है, दैट्स अ प्रॉब्लम। तीसरा मसला जो उसमें ये है कि टियर्ड सिस्टम था, विच मेड लॉट ऑफ सेंस, तरीका सही था वो करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ है, 40 से 60% हेल्थ केयर वर्कर्स जो है वो वैक्सीन लेना ही नहीं चाह रहे। मसलन हमारे अपने हेल्थ सिस्टम में ये कि हमने कहा भाई हम आपको एलिजिबल है हम देंगे, अगर कोई नहीं ले रहा तो हम वी वर जस्ट मूविंग ऑन। तो हमने तो बड़े सक्सेसफुली किया, बजाय इसके लोगों को कन्विंस करेंगे कि वो भी वक्त आएगा, तो हमने दिया। उसके बाद हमने खोल दिया और लोगों के लिए, फैमिलीज के लिए, यू नो स्लोली हम करते रहे। आपको ये भी मालूम है कि ये जो चीज है ये ज्यादातर कंट्रोल है, क्या किसको दे सकते हैं किसको नहीं दे सकते, स्टेट्स। सो अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टेट्स भी, मैं तो फ्लोरिडा में हूँ, फ्लोरिडा में तो बहुत ही हालात खराब है, सिलसिले में स्टेट ने स्टेट की प्लानिंग बहुत ही कमजोर थी अनफॉर्चुनेटली, और स्टेट्स में भी ऐसा ही चल रहा है। मेरा ख्याल है कि न्यूयॉर्क तो फिर भी बेटर है बाकी जगहों से। तो बहुत मल्टीपल रीजंस थे, आई थिंक द अदर मेन रीजन, आई थिंक वी हैव टू ऑल एग्री, वी हैव नेवर हैड इस तरह की कोई चीज इससे पहले, हमने कभी की ही नहीं
जी।
तो ये नई चीज थी, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे भी उम्मीद थी कि इतना खराब नहीं होगा, बहुत लोगों को उम्मीद थी, लेकिन अब प्लानिंग इसकी जो ऐसी लेवल तो हो गए ना, लेकिन आगे शॉट्स नहीं दे सके, तो कोशिश कर रहे हैं, इसलिए रिसोर्सेज चाहिए होती है ना।
बहुत से लोग बहुत बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं, लोग इसको नहीं लेना है, इसका क्या कोई नफसियाती सबब है या कोई प्रोपेगेंडा है या ये कि लोग मुतमइन नहीं है इससे?
आई थिंक एक अनफॉर्चुनेटली एक वो सिस्टम सा बन गया हमारे मुल्क में और वेस्ट में और जगह भी, कि जहाँ हर चीज को कंस्पिरेसी बना ली जाती है कि ये वैक्सीन भी कोई किसी का बड़ा कंस्पिरेसी थी प्लान है या क्या है, कुछ एंटी वैक्सीन जो ग्रुप है वो भी इसको उछाल रहे हैं। और तीसरी बात जो हमें एग्री करनी पड़ेगी कि प्रॉब्ली वायरल वैक्सीन है जो इतनी जल्दी मार्केट में आई है इतने शॉर्ट रिसर्च टाइम के बाद, इसकी 3 महीने की डाटा के बाद अप्रूव हुई, लेकिन इमरजेंसी थी, जरूरत थी। अब अगर आप समझ सकते हैं रिसर्च को और देख सकते हैं, तो जो लोग समझ सकते हैं देख रहे हैं वो तो कंफर्टेबल है, मैंने भी लगवाई है, मेरे बच्चों ने भी लगवाई है, मेरी फैमिली ने लगवाई है, दोस्तों को, मैं तो सबको इनकरेज कर रहा हूँ। ये लोगों को ख्याल है कि इससे कोई बहुत प्रॉब्लम्स होगी, बहुत प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि जो मोस्टली जो वैक्सीन जब लगाते हैं ना, जिसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो पहले 6 से 8 हफ्ते वैक्सीन लगाने के 6 से 8 हफ्ते बाद हो जाती है, उसके बाद बहुत रेयर होती है। तो क्लियरली ये वैक्सीन स्टडी जो है ये 40,000, 60,000, 70,000 लोगों में हुई है, तो जब आप ये 4 मिलियन या 400 मिलियन लोगों को देंगे तो कुछ ऐसी रेयर एडवर्स इवेंट्स हैं जो आपको उसमें रिसर्च में नहीं मिल सकते थे, वो आपको नजर आएंगे साथ। लेकिन उसमें समझने की बात ये भी है कि एक जो इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स है वैक्सीन की, आया वो अगर आपको एक्चुअल इन्फेक्शन उससे कम है कि ज्यादा है। मुझे इजाजत दीजिए आपको एग्जांपल देता हूँ कि फ्लू वैक्सीन मत ले लीजिए आप। अगर आपको फ्लू की इन्फेक्शन हो तो एक मर्ज होता है उसे कहते हैं 11 मरे। अगर आपको फ्लू की इन्फेक्शन होती है तो 1 से 3 लाख लोगों को जिनको इन्फेक्शन होती है उसमें से 1 को 11 मरे होंगे। अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो 1 से 3 मिलियन लोगों जिनको वैक्सीन मिलती है उनमें से 1 को 11 मरे। अब आप ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन से 11 मरे नहीं हो सकता, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको फ्लू हो जाए तो आपके 11 मरे के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसी तरह हर वैक्सीन में होगी कॉम्प्लिकेशन, ये तो आप टैगलॉन भी कहेंगे तो उससे भी आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा ओवर ब्लोन है, इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है। मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन ये है कि हम जैसे कुछ कुछ लोग ऐसे हो जब देखेंगे कि लोग ज्यादा ले रहे हैं वैक्सीन और कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही तो वो और भी आ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप कन्विंस नहीं कर सकेंगे। इस वक्त हमारे पास उन लोगों पर टाइम, मेरा अपना ओपिनियन है, जाया नहीं करना चाहिए। उन लोगों को तो कम अज कम दीजिए जो लेना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो लेना चाहते हैं, वैक्सीन है कि उनके पास कोई तरीका नहीं है वैक्सीन लेने का, उन लोगों को तो कम अज कम दीजिए। तो मेरा अपना ओपिनियन है कि वेरी सून ये जो टियर्ड सिस्टम बनाया था विच वॉज अ वेरी गुड वेरी वेल थॉट आउट एंड वेरी अप्रोप्रिएट सिस्टम, वो खत्म हो जाएगा कि जिसको चाहिए आके ले।
दूसरी ये कि अमेरिका में इतनी तेजी से क्यों फैला है और अभी तक ये ऊपर ही जा रहा है, फैल ही रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, इसका क्या सबब है?
उसके बहुत सी वजूहत है। एक तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली आप देखें फ्लोरिडा में बहुत फैल रहा है, हमने कोई इतने प्रिकॉशन स्टेट वाइड नहीं लिए, कोई हमने स्टेट खोलते हैं, आई डोंट बिलीव हमने रिस्पॉन्डेड टू दिस वेरी इफेक्टिवली, एक तो ये है. दूसरा ये है कि आई मीन हमारा विद ऑल इट्स वीकनेसेस हमारा हेल्थ सिस्टम काफी रोबस्ट है, तो हम लागत लोगों को टेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा लोगों को पता चल रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इट. But the reality is that number of infections increase ho rahi hai. This was totally predicted. Aapne bhi ye suna hoga ki Thanksgiving ke 3 se 4 hafte baad hone ke zyada hue, Christmas ke 3 se 4 hafte baad ke zyada hue. To ye to hame maloom tha ki ye ho. Jab 4 se 5 billion log travel karenge to ye to hona hi hai. Log plead kar rahe the Fauci aur baaki sab ke please travel na kare, gharon mein rahe. Ab wo bhi nahi sun raha tha. Fir abhi bhi aap dekhe hamare abhi bhi लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं पहनते और इधर उधर पार्टीज में जा रहे हैं और ये कर रहे हैं, दैट इज नॉट वे. आप अपने अपने को भी नहीं प्रोटेक्ट करते और अपनी कम्युनिटी को भी नहीं प्रोटेक्ट करते, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट.
ये जो अब नई स्ट्रेन्स आ रही हैं, क्या कहते हैं कि ये जो स्ट्रेन्स हैं कवर हो जाती हैं इस वैक्सीन से, इसके लिए कोई अलग वैक्सीन बनानी पड़ेगी?
डॉक्टर साहब पहली बात तो ये समझने वाली है कि जो वायरस है ना ये हर वक्त म्यूटेट करते हैं, ये हर वक्त चेंज हो रहे होते हैं. सिर्फ फर्क यह है कि मोस्ट वायरस कोई लोग परवाह नहीं करते, इसमें बड़ी अटेंशन है. एक तो ये बात याद रखिए, वायरस इज म्यूटेट ऑल द टाइम. आप वायरस इन्फ्लुएंजा का ले लें, हर साल नई वैक्सीन क्यों होती है कि वायरस थोड़ा सा म्यूटेट हो जाता है. हर 10 से 40 साल बाद एक पैंडेमिक होता है इन्फ्लुएंजा का, वो क्यों कि वायरस बहुत ज्यादा म्यूटेट हो जाता है. म्यूटेशन है ना बहुत थोड़ी है. अगर आपको याद होगा कि शुरू शुरू में जब अमेरिका में आया है तो एक ईस्ट कोस्ट पे था वो सर्ट ऑफ इटालियन वेरियंट था, और जो वेस्ट कोस्ट पे था वो चाइनीज वेरियंट था, सरास फर्क था उनमें. अब ये जो और स्ट्रेन आए हैं साउथ अफ्रीका में है, नाइजेरिया में है, हर जगह निकलेंगे और स्ट्रेन, वो दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस इन वायरसेस का, नंबर वन. नंबर दो बात यह है कि इस वक्त तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि वैक्सीन इसके खिलाफ काम नहीं करेगी. ऑल द करंट एविडेंस suggest कि वैक्सीन would be effective against the variant. So यही मैं आपको बता सकता हूँ. Obviously CDC और अदारे जो हैं वो इसकी तरफ बहुत तवज्जो देंगे और रिसर्च करेंगे ताकि मालूम हो कि क्या हो सकता क्या वजह है कि ये हो सकता है कि वैक्सीन काम करे. So that will happen. मगर yes we have to be vigilant. लेकिन इतनी परेशानी की बात नहीं है, ये चीज होगी. ये साइंसदान और जो रिसर्च है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ये होगा. So तो आप ये देखेंगे जो रिसर्च कम्युनिटी और वो इतनी इस पे इतनी परेशान नहीं है जितनी जनरल पब्लिक परेशान है.
ये थे डॉक्टर मुबीन राठौर.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है. आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं. पता है facebook.com/voaurdu.
ये प्रोग्राम बुध के रोज रिकॉर्ड किया गया है. पाकिस्तान में भी कमोबेश यही सूरत हाल है कि लोग ये वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है. डॉक्टर एजाज अहमद शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में उस प्रोग्राम के इंचार्ज हैं जिसके तहत कोरोना वैक्सीन के ट्रायल किए गए. डॉक्टर एजाज ये फरमाइए कि लोग इस वैक्सीन के बारे में इतने मुतामिल क्यों हैं?
लोगों को हम ये बता रहे हैं कि फायदे क्या है वैक्सीन के और ना लगाने के नुकसान क्या है. खासकर इस तरह वबाई शक्ल जब इख्तियार कर चुके कोरोना वायरस, तो उसमें वैक्सीन की अहमियत और अफादियत जो अभी तक आई है वो हौसला अफजा है. तो लोगों को उससे फायदा उठाना चाहिए. मेरे ख्याल में लोगों को चाहिए कि गलत किस्म की अफवाहें या इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, उसको तकबीर ना दें, उस पर कान ना धरें और मुस्तनद ज़राए से अपनी इंफॉर्मेशन लें और उसको उसके बेसिस पे अपना डिसीजन करें ताकि लोगों को एक इन्फॉर्म किस्म की डिसीजन मेकिंग में मदद मिल सके.
लोगों को ये ख्याल क्यों आ रहा है, ये बात उनके जहन में क्यों आ रही है कि ये इससे न सिर्फ ये कि कोई फायदा नहीं बल्कि उल्टा इससे नुकसान होगा वैक्सीन से, आखिर इसका सबब क्या है?
दो चीजें, एक तो है लैक ऑफ नॉलेज इन्फॉर्मेशन और जो एंटी वैक्सीन की लॉबी है वो एक्टिव ज्यादा है और जो प्रो वैक्सीन है वो इतनी एक्टिव नहीं है. ये मेरे ख्याल में बेसिक इन्फॉर्मेशन है. और जाहिर बात है कि लोग जो है ना खौफ को इस्तेमाल किया जाता है लोगों को जो भी उनका इंटरेस्ट होता है कि जो लोगों का इंसानियत के लिए भलाई के लिए जो काम हो रहा है उसमें रखना डाला जाए. और मेरे ख्याल में इसमें जाहिर बात है हमारी तालीम इंफॉर्मेशन करेक्ट इंफॉर्मेशन और लोगों को बर वक्त मालूमात और सही मालूमात जब तक ना दी जाए तो ये बाकी जो मिस इन्फॉर्मेशन है और फिर उसके लिए موقع مل جاتا ہے لوگوں کو بھی گردش کرنے, اور جب لوگ زیادہ سنیں گے تو اس کو پھر اسی طرح اس کی تشہیر ہوتی ہے اور پھر لوگ اس پہ زیادہ توجہ دیتے اور اس کو مستند سمجھتے, جو کہ ٹھیک نہیں ہے.
آپ نے دو اصطلاحیں استعمال کی, پرو ویکسین لابی اور اینٹی ویکسین لابی. یہ اینٹی ویکسین لابی جو ہے اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے؟
دیکھیں یہ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں ایک خاص ایک گروپ ہے جو کہ ہر وقت ایگزسٹ کرتا تھا, پہلے بھی اور ابھی بھی کرتا ہے. ان کا ایگزیکٹ مقصد جو ہے کوئی ہوتا نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں ان کو ایک وہ چاہیے, ایک مشہوری چاہیے, ایک اس کی جو کہ میرے مجھے سمجھ آتی ہے, کیونکہ ان کے مقاصد لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اور اپنی طرف توجہ ڈالنے کے لیے ایک گروہ ہو سکتا ہے, لیکن ایگزیکٹ مقاصد میرے خیال میں بن ہیڈن ہے, جو کہ میرے خیال میں میں تو اس پہ پن پوائنٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ پہلے بھی کسی نے میرے سے پوچھا کہ ان کے مقاصد کیوں ہوتے ہیں, وہ کیوں کرتے ہیں. تو ایسے ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی خبر آ گئی کہ جی وہ اس کو ٹھیک لگ گیا, وہ اس کو یہ ہو گیا, تو اس پہ پھر لوگ خاص کر کے ایسے جو کہ زیادہ اپنی جس کو کہتے ہیں کچھ شخص خاص شخصیت کے مالک ہوتے ہیں, وہ پھر اس کو لے کے چلتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی مشہوری کے لیے بھی, اپنی ایک پارٹی بازی سمجھے یا ان کی ایک خاص ایک گروہ بن جاتا ہے, پھر اس کو لے کے چلتے ہیں اور اپنی ان کو کوریج ملتی ہے, اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ چیزیں جو سچ ہے وہ اس میں دب جاتا ہے.
اچھا ڈاکٹر اعجاز, جو شفا انٹرنیشنل میں ویکسین کے ٹرائلز ہو رہے تھے اور آپ ظاہر ہے کہ اس کے انچارج تھے, آپ اس کو لک آفٹر کر رہے تھے, اب کیا پوزیشن ہے اس وقت پاکستان میں ویکسینیشن کے حوالے سے؟
جی یہ جو فیز 3 ٹرائل چل رہا ہے کینسائنو بایولوجک کا, تقریباً 17,000 کے قریب ویکسینیشن لگ چکی ہے, تمام سینٹر ہیں جو پاکستان بھر میں جہاں پہ ہوئے وہ وہاں پہ اپنے ڈیٹا کو پھر پیش کریں گے انالیسس کے لیے, جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس مہینے کے آخر تک کچھ انیشل انالیسس ہمیں مل جائے گا. فل انالیسس ظاہر بات ہے اس میں ابھی وقت درکار ہے, یہ ایک سال کا ٹرائل ہے جس میں کچھ چیزیں جلدی آئیں گی, خاص کر کے یہ بتانے کے لیے کہ یہ ویکسین کتنی افیکٹو ہے, یہ انفارمیشن شاید ہمیں مل جائے تو اس کے بعد اس ویکسین کی تیاری اور پھر اس کی ڈسٹریبیوشن شاید شروع ہو سکتی ہے جس طرح کے باقی ویکسین کی ہے, اور اس کے پاکستان کو جلدی فائدہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی تک جو ویکسینیشن چل رہی ہے اس کے اندر کوئی خاص کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی سیفٹی کے حساب سے, میرے خیال میں سیفٹی کے حساب سے جس طرح فیز 1 اور پھر فیز 2 اور پھر ابھی فیز 3 کے اندر یہ ویکسین ابھی تک بظاہر تو سیف ہے, لانگ ٹرم افیکٹ کا نہیں پتا ہمیں. باقی ممالک کے ساتھ مل کے ابھی تک تقریباً میرے خیال میں 30,000 کے قریب لوگوں کو یہ ویکسین لگ چکی ہے, ایکسپیکٹڈ ہے کہ جب 40,000 تک پہنچے گی تو پھر یہ ویکسین ختم بھی ہو جائے گا, اور پھر اس کے نتائج کچھ انیشل نتائج اور پھر حتمی نتائج پھر بعد میں اس کو لوگوں دیکھا جائے گا اور اسے پھر لوگوں سے شیئر کیا جائے گا, اور اس کے بیسس پہ آپ بتائیں گے کہ یہ ویکسین کتنی افیکٹو ہے اور کب اس کو مارکیٹ میں لایا جائے.
کیا پاکستان صرف چائنیز ویکسین پہ ڈیپینڈ کرے گا یا دوسری ویکسینز بھی خریدے گا؟
دیکھیں پاکستان ایسا ملک ہے جس کے پاس کوئی زیادہ چوائسز ہوں گی نہیں, پاکستان کو ایسی ویکسین چاہیے جو سستی بھی ملے, جس کی لاجسٹکس یعنی کہ ٹرانسپورٹیشن, اس کی اسٹور, اس کی ڈسٹریبیوشن میں کوئی زیادہ جو ویکسین پروگرام کے حساب سے جو لوازمات ہیں وہ بہت زیادہ ان کی ریکوائرمنٹ نہ ہو تاکہ آسانی سے لوگوں تک پہنچایا جائے, تو یہ تمام چیزیں مد نظر رکھی جائیں گی, خاص کر کے کاسٹ اور پھر اس کی ڈسٹریبیوشن اور اس کی اسٹوریج کے حساب سے, اور کیونکہ یہ تو کئی ملین ڈوزز آئیں گی اور ظاہر بات ہے کہ جگہ جگہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی, پھر پاکستان نے اپنی خود ایک پلان کیا ہوا ہے اور ابھی بھی مزید اس میں ہو سکتا ہے پلان کریں کہ کون سی پاپولیشن کو پہلا لگایا جائے اور کس طرح لگایا جائے اور کتنے عرصے میں لگایا جائے اور اس کو کے لیے کس طرح کی فورس چاہیے درکار ہوگی, کون سے تمام ذرائع استعمال ہوں گے جس سے ویکسینیشن لوگوں تک جلدی پہنچے اور لوگوں کو اس سے حفاظت بھی ملے, خاص کر کے فرنٹ لائن ورکرز ہیں, جو بوڑھے لوگ ہیں, جو ہائی رسک ہیں, اس کو پہلے
پہلے فیز میں تو ان کو لگایا جائے گا, اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ اس کی عمر کے جو کم عمر والے ان کو لگائی جائے گی, پھر بچوں کو اس طرح سے.
اچھا بچوں کو یہ کس طرح افیکٹ کر رہی ہے بیماری؟
بیماری تو بچوں میں ہے اور یقین کریں پاکستان کے اندر اور ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ بیمار بچے بھی ہوتے ہیں پہلے ویو میں بھی اور سیکنڈ ویو میں بھی, اور زیادہ تر بچے چونکہ بڑوں کے مقابلے میں اس بیماری کو زیادہ اچھی طرح ڈیل کرتے ہیں اور ان کے اندر آؤٹ کم اتنا برا نہیں ہے جتنا ایڈلٹس ہوتا ہے, کیونکہ جب وہ ایج ریلیٹڈ پرابلم وہ نہیں ہوتا. تو الحمدللہ بچوں کو ابھی تک یہ سویئر ڈیزیز نہیں ہوتی, لیکن سویئر ڈیزیز جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دیا کہ سویئر ڈیزیز ہو سکتی ہے اور وہ کون سے بچے ہوتے ہیں وہ پتا نہیں سکتے, ہیلدی بھی ہو سکتے ہیں اور ان کو کوئی انڈر پہلے کوئی پرابلم چل رہی پھر بھی ہو سکتے ہیں.
کیا آپ کوئی ٹریٹ کرنے کی دوائیں بھی استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں ویکسینیشن کے علاوہ؟
ہاں جی, ٹریٹمنٹ میں تو کافی دوائیاں آ چکی ہیں, جس میں سب سے پہلے جو مستند دوائیاں جو ابھی تک استعمال ہو رہی ہیں اس کے اندر ہیں مختلف قسم کی بایوٹکس ہیں, لیکن اس میں جو اسپیسیفک دوائی ہے کووڈ کے لیے وہ تو اسٹیرائڈز ہیں اور اینٹی وائرلز ہیں اور وہ پاکستان میں استعمال ہو.
تو یہ دوائیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں یہ افیکٹو بھی ثابت ہو رہی ہیں, ٹریٹ کر رہی ہیں یا یہ کہ صرف کوشش ہے یہ؟
ہاں نہیں یہ میرے خیال نہیں بالکل, یہ ہمارے خیال میں کچھ یہ اسٹیرائڈ خاص کر کے وہ تو پروون افیکٹو ہے اور ہمارے خیال میں اس سے کافی فرق پڑا ہے, ہمارے مریضوں کو اس سے فائدہ اٹھایا, جلدی ٹھیک ہوتے ہیں ان کو, پھر بیماری جو ہے وہ سویر نہیں ہوتی اور جلدی ہاسپٹلائزیشن بھی ان کی شارٹ ہوتی ہے.
ہم گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر اعجاز احمد سے. یہ پروگرام آپ کی خدمت میں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے. اور سامعین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ لوگ اس ویکسین کے سلسلے میں تعامل رکھتے ہیں اور بعض لوگ لگوانے سے گریز بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن دنیا بھر میں لوگوں کو اس بات پر قائل کرنے کے لیے کہ یہ ویکسین لگوانا ضروری ہے پروگرام شروع کیے گئے ہیں. اسی قسم کا ایک پروگرام نیو یارک اسٹیٹ میں بھی شروع کیا گیا ہے اور شبیر گل صاحب جو کہ ایک پاکستانی سرگرم کارکن ہے نیو یارک کے گورنر کی ویکسین اویئرنیس ٹیم میں شامل ہیں, وہ بتاتے ہیں.
اچھا, نیو یارک چونکہ گیٹ وے ہے, یہ کرونا جو چائنا سے شروع ہوا یورپ پہنچا, وہاں سے اٹلی, وہاں سے یو کے اور اس کے بعد ہمارے یو ایس اے کے اندر, کیونکہ نیو یارک گیٹ وے ہے, یہاں پر جو پیسنجر لینڈ کرتے ہیں ان کے ٹیسٹ کا یہاں پر کوئی انتظام نہیں, جس کی وجہ سے جو پیسنجر آتے ہیں ان کو نہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے نہ ان کو کوارنٹین کیا جاتا ہے, اس کی وجہ سے نیو یارک میں بڑی تیزی سے یہ پھیلا, اموات بھی بہت زیادہ ہوئی اور اسی طرح پورے یو ایس اے کے اندر آپ نے دیکھا. ابھی یہ اس کی دوسری جو فیز ہے وہ چل رہی ہے اور گورنر صاحب نے ہمیں ٹیم میں شامل اس لیے کیا کیونکہ گزشتہ 10 ماہ سے ہم الحمدللہ ہماری کمیونٹی کی لیڈرشپ میں یو ایس اے کے اندر نیشنل لیول پہ سب سے بڑا فوڈ ڈسٹریبیوشن کا پروجیکٹ کیا, 750 تقریباً بڑے ایونٹس کیے جس کے اندر ہم 65 لوکیشن پہ لوگوں کو فوڈ پرووائڈ کرتے رہے ہیں. کیونکہ ہمارا سٹی نے اسٹیٹ نے یہ کام دیکھا کہ ہماری ٹیم بہت ایکٹیو ہے, انہوں نے پھر ہمیں باڈی ٹیسٹنگ کی ٹیم کے اندر شامل کیا, جو ہم پہلی آرگنائزیشن تھے جو اینٹی باڈی ٹیسٹ بھی کرتے ہیں, اور ابھی ہم کورونا ٹیسٹ تقریباً 50-60 مشقوں کی پارٹنرشپ کے ساتھ وہ ابھی کر رہے ہیں. تو یہ دیکھتے ہوئے گورنر کی ٹیم نے ہمیں اپنی ٹیم کے ساتھ شامل کیا کہ جو ہماری جو کمیونٹی ہے جو ان ایجوکیٹڈ ہے یا جو دریو سیم ہوئی ہے ان کو ہم اس کے اوپر اعتماد میں لے سکیں اور ان کو یہ اویئر کر سکیں کہ اس کے لگانے سے کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے, یہ آپ کی جان کے بچاؤ جو ہے اس کے لیے یہ ویکسین ہے. تو اس لیے آپ اسٹیٹ کے اندر کمیونٹی کے کمیونٹی کی لیڈرشپ کے چند لوگ ہیں جن کو انہوں نے گورنر نے اپنی ٹیم میں شامل کیا. اور
کون سی کمیونٹی, صرف مسلمان کمیونٹی جو ہے وہی رجسٹر کر رہی ہے یا اور بھی لوگ ویکسین لگوا رہے ہیں؟
نہیں نہیں, دیکھیں دوسری بھی کر رہے ہیں. دیکھیں ہماری مساجد جو میری چونکہ میں ایم آئی سی فار جسٹس مسلم ایڈمنیسٹریشن کوالیشن فار جسٹس کا میں پریزیڈنٹ ہوں, میرا یہاں کے امامز کے ساتھ بڑا تعلق, تو میں نے خود بے شمار امام جو ہے ان کو اس کے اوپر تحفظ میں دیکھا, اور اسی طرح ہمارے جو چرچز کے کچھ پادری ہیں ان کے اندر بھی یہ تحفظ پایا جاتا ہے. اور اسی طرح ہماری جو افریقن کمیونٹی یا عرب کمیونٹی کے ہمارے جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی, ضروری نہیں کہ ہمارے مسلمان جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی تحفظ ہے, چونکہ پچھلے دنوں کافی کچھ انگلینڈ سے, یو ایس اے سے, یورپ سے کچھ ڈاکٹرز کی ویڈیو جو ہے وائرل ہوئی, جس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے دراصل ڈی این اے جو ہے اس کو یہ چینج کرتا ہے. تو ایسی اس میں کوئی بات نہیں.
اب آپ کا پلان کیا ہے, آپ کس طرح سے لوگوں کو کنونس کریں گے, کتنی مسجدوں کو آپ انوالو کریں گے, کتنے ائمہ کو انوالو کریں گے؟
جی جی, میں دیکھیں جی, ہم یہ جو فوڈ پینٹریز ہم کرتے رہے ہیں, میں الحمد للہ 65 صرف مسجدیں جو ہیں ان کو ہم نے ٹارگیٹ کیا ہوا تھا, جو ہمیں کہا گیا کہ یہ جو ایریاز ہیں ساؤتھ برانچ, ہارلم اور ماؤنٹ ورنر, یانگسٹر, ویسٹسٹر کاؤنٹی, اپ اسٹیٹ, کچھ ایسے جو علاقے تھے جہاں پہ بہت زیادہ کرونا جو ہے پھیلا تھا, وہاں پہ ہمارے مساجد اور چرچز کے ساتھ, ڈفرینٹ فیتھ کمیونٹی کی لیڈرشپ اور ورشپ سینٹرز کے ساتھ ہمارا ایک الحمدللہ نیکسس تھا, اور اسی کو اب ہم یوز کر کے, ہماری الحمدللہ کل زوم میٹنگ بھی ہوئی ہے اس سلسلے میں, جس میں 15-16 جو ہے پریچ تھے, 5-4 ریبائی تھے, 3-4 امام تھے, اور کمیونٹی کی اس طرح لیڈرشپ جن کو ہم ہماری اسٹیٹ کی گائیڈ لائن کے مطابق ہم نے ان سے مشاورت کی, اور الحمدللہ ہمارے لوگ جو ہے, جو ان کا جو تحفظ تھا, ان کے کچھ سوالات تھے جو ہم نے ہدایات جو ہماری اسٹیٹ اور گورنر کی ہیں اس کے مطابق ہم نے ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی الحمدللہ, اور اس سے یہ تاثر میں نے لیا کہ لوگوں کے اندر جو ہے اس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ویئر کرنے کی ضرورت ہے, تو انشاءاللہ یہ جو لوگ ویکسین لگوانا نہیں چاہ رہے انشاءاللہ وہ بھی ضرور لگوائیں.
تو یہ آپ پورے نیو یارک اسٹیٹ میں کر رہے ہیں یا اسٹیٹ سے باہر بھی کر رہے ہیں؟
نہیں, ہمارا مینڈیٹ جو ہے نا یہ صرف اسٹیٹ کے اندر ہے.
آپ نے کیا پلان بنایا ہے, کتنے عرصے میں آپ اس کام کو مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟
دیکھیں جی, ابھی کہنا تبلس وقت ہے, کیونکہ ویکسین جو ہے یہ فیڈرل پرووائڈ کر رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کا جو پروڈکشن کا یا سپلائی کا ڈسٹریبیوشن کا جو ہے وہ بڑا سلو ہے, یعنی ویکلی ہمیں 300,000 جو ہے ویکسین پرووائڈ ہو رہی ہے, دیٹ مینس 300,000 1.2 million پر منتھ. تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ 20 million لوگوں کو جب ویکسینیٹ کیا جائے گا تو اس کے اوپر کتنا ٹائم لگے گا. ایسے اسٹیٹ گورنمنٹ اپنی طور پہ بھی فائزر اور میڈونا اس دونوں کے ساتھ خود بھی کنیکٹ ہے اور کوشش کر رہی ہے. اس کے علاوہ جو پرائیویٹ کچھ فیسلٹیز ہیں اس کے اوپر وہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں. 15 January کے بعد بہت بڑے پیمانے پر یہ شروع ہو رہا ہے, 600 لوکیشن کو ویکسین پرووائڈ کر دی گئی, اور 156 ہاسپٹلز ہیں جو بڑے, جہاں پر یہ کام بڑی تیزی سے کیا جا رہا ہے.
مسلمان کمیونٹی کتنا آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے؟
الحمدللہ مسلم کمیونٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ بڑی کوآپریٹیو ہے, ہمارے مامز کو کچھ تحفظات ہیں, تو دیکھیں لائک آف ایجوکیشن ہے, تعلیم کی کمی ہے, اور ہم جو جدید ٹیکنالوجی ہے یا پھر یہ جو جس طرح یہ ابھی ویکسین آئی ہے, ہم اس سے استفادہ حاصل نہیں کرنا چاہتے, ہم اپنے پرانے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے اور شکتی اپروچ کے ساتھ جو ہے اس منفی پروپیگنڈے کو ہم پھیلا رہے ہیں, اور جس کا بڑا نیگیٹو جو ہے اثر جاتا ہے ہماری کمیونٹی اس طرح پیچھے رہے گی.
یہ تھے شبیر گول.
اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے, اپنے میزبان قمر عباس چاپری کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی